मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 18 सितंबर 2017 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही व्यावहारिक विषय पर बात करने जा रहे हैं और सच पूछिए तो मुझे नहीं लगता कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं इस विषय से संबंधित जो समस्या है कभी न कभी इसका सामना नहीं किया होगा। अपवाद रूप में इक्के दुक्के कोई होंगे तो मैं नहीं कह सकता हूं, अदरवाइज हम में से हर कोई इस समस्या को झेलता रहता है, परेशान रहता है, सच पूछे तो कोई रास्ता भी नहीं निकाल पाता। और एक तरीके से यूं कह लीजिए कि ऐसा होने पर दो चीजें तो हो ही जाती हैं। पहली बात तो यह है कि जब हम रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमारा जीवन बेहतर नहीं हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि जब हम अपनी समस्या में ही उलझे हुए हैं, उसका निदान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए, जो हमारी पहचान बनेगी, जिसे हम अपने जीवन की उपलब्धियां मान सकते हैं, कह सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि किसी में ये कम होता है, किसी में ये ज्यादा होता है और किसी में तो बहुत ही ज्यादा होता है, और जिनमें बहुत ही ज्यादा का स्तर पहुंच जाता है, आप समझ लीजिए कि उनका जीवन सच में कितना दयनीय हो जाता होगा। मित्रों, यह विषय मुझे आप में से ही किसी एक प्रिय श्रोता ने दिया है और उन्होंने मेल में लिखा कि सर, आप इस पर जरा सा बताएं कि क्या कारण है कि हमें जो कुछ भी मिल जाता है हम कुछ समय के बाद उसी से ऊब जाते हैं, उसी में रस आना बंद हो जाता है, हमें कुछ और दूसरे की इच्छा होने लगती है। ये उनका सवाल है, या यूं कह लीजिए कि ये उनकी समस्या है और ये उनकी ही समस्या नहीं है। सच पूछिए तो हम सबके प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने हम लोगों के सामने यह बात रखी है, तो मैं इसी विषय पर आज आपसे कुछ अपने थॉट्स शेयर करने जा रहा हूं। मित्रों, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, वैसे भी लंबी चौड़ी बात करने की गुंजाइश भी नहीं होती है। इस विषय पर मुझे ध्यान आ रहा है कि इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ बातें की हैं, हालांकि वह इस पर आधारित बिल्कुल नहीं था कि जो मिल जाता है, वह इस विषय पर था कि जो कुछ भी हम करते हैं कुछ दिनों में उससे ऊब जाते हैं, ऊब होने लगती है। और उस समय मुझे ध्यान आ रहा है कि किसी स्टूडेंट ने अपनी यही समस्या रखी थी कि हम जोश खरोश के साथ तो आईएएस की तैयारी में लग जाते हैं, उस समय खूब जोश होता है, हम खूब लगे भी रहते हैं, मजा भी आता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही धीरे धीरे ऊब होने लगती है और वही बहुत बोझिल मालूम पड़ने लगता है, लदड़ फदड़ सा लगने लगता है और मन करता है कि हे भगवान, कब इससे मुक्ति मिले। तो हम लोगों ने उस बारे में बात की थी। आज हालांकि संदर्भ थोड़ा सा दूसरा है लेकिन उससे बहुत अलग भी नहीं है। मैं पुरानी बात की याद इसलिए आप सबको दिला रहा हूं कि यदि आपको उस लेक्चर का स्मरण हो तो आप उसे भी इससे जोड़कर देख सकते हैं, तो उससे यह विषय आपके लिए और इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं दो सबसे बड़ी क्या यूं कह लीजिए कि महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगा। दो सबसे महत्वपूर्ण बातें कि आफ्टर ऑल इस समस्या की जड़ है कहां। देखिए, मेरा जो विश्वास है वो जड़ तक पहुंचने का ज्यादा रहता है। ऊपरी तौर पर तो मैं बहुत सी बातें आपको बता सकता हूं लेकिन मुझे लगता है कि अगर समस्या की जड़ तक पहुंचा जाए तो फिर हम जड़ ही उखाड़ दें तो समस्या खत्म हो जाती है। तो अगर हमें समस्या से मूलभूत और एकदम से निजात चाहिए, बिल्कुल ही निजात चाहिए, तो जरूरी बात हो जाता है कि हम उसकी जो जरूरी, जो बहुत ही जड़ से जुड़ी हुई बातें हैं उनको समझें, उनको जानें। दो मुझे सबसे बड़ी बातें लगती हैं और तीसरा एक और है जो ये कह लीजिए इसी के सपोर्ट में है। तो मैं दो सबसे महत्वपूर्ण बातें पहले आपके सामने रखना चाहूंगा। दोस्तों, पहली बात तो ये मानकर चलिए कि अभी मैं बात नहीं रख रहा हूं, मुझे एक दूसरी बात ध्यान में आ गई कि यह समस्या आज की ही समस्या नहीं है। यह समस्या मुझे लगता है कि जब से मनुष्य ने सोचना विचारना शुरू किया, राइट, पहली बात, और दूसरी बात, जब से मनुष्य के सामने विकल्प आए, विकल्प का मतलब है कि उसके सामने एक से अधिक चीजें हैं। जैसे देखिए, एक ही चीज अगर आपके सामने है तो बात खत्म हो गई, आपको वही चीज मिलेगी जो आपके सामने है, और मिल जाएगी तो हम उसी से ही जुड़े रहेंगे क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं। तो जैसे ही व्यक्ति के सामने हमारी सभ्यता संस्कृति के विकास के दौर में विकल्प आए, वैसे ही उसके अंदर यह समस्या पैदा होने लगी, बल्कि ज्यादा अच्छा होगा मैं कहूंगी यह संकट पैदा होने लगा। और फिर अगली बात कि जैसे जैसे विकल्पों की संख्या बढ़ती चली गई, वैसे वैसे नो डाउट कि ये संकट भी और बढ़ता चला गया, फैलता चला गया, उसकी फ्रीक्वेंसी भी तेज हो गई। फ्रीक्वेंसी तेज होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि पहले मुझे कोई चीज मिल गई, ठीक है, तो उससे मैं 5 साल तक तो समझ लीजिए कि कम से कम जुड़ा रहता था, कि चलो उबता भी था तो 5 साल के बाद उबता था और फिर किसी नए की तलाश में निकल जाता था। अब तो हालत यह हो गई कि 5 महीने भी उससे जुड़ाव रह जाए तो बहुत मुश्किल, मतलब बहुत ही अद्भुत बात है। 5 दिन में लोग उबने लगते हैं, इसको मैंने कहा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दूसरी पाने की जो चीजें हैं वो ढेर सारी दिखाई दे रही हैं, वो लिस्ट में तो इतनी ज्यादा है कि लगता है कि हम अपने इस जीवन में तो इन सब चीजों को पा ही नहीं सकेंगे और हम सबको पा लेना चाहते हैं। तो उसका तरीका यही है कि जो मिला है उससे जल्दी से जल्दी मुक्ति पाई जाए, इसको छोड़ा जाए, तभी तो आप नए को पकड़ेंगे। ये अभी की हमारी सभ्यता और संस्कृति की बहुत बड़ी चुनौती मित्रों है। मुझे मालूम है कि हम लोगों के समय में जो गाने बज रहे हैं, फिल्मी गाने तो महीनों तक बज रहे हैं, बिना का प्रोग्राम आता था उसमें एक पता लगा कि पायदान पर 1 से 10 तक के गाने, सालों हम उन्हीं गानों को सुन रहे हैं, बड़े मेलोडियस गीत होते थे, लगातार सुनते सुनते वो सारे के सारे गीत याद हो जाते थे। एक फिल्म लगी हुई है तो महीनों सालों तक वो उस टॉकीज में चल रही है और लोग देख रहे हैं, एक एक फिल्म को कई कई बार देख रहे हैं फिर भी नहीं उब रहे हैं। तो उस दौर को आप याद कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा उस समय क्यों था। अब तो हालत यह है कि अगर किसी फिल्म ने लगते ही 2-3 दिन में बहुत अच्छा बिजनेस नहीं किया तो पता लगा उसका अगला सप्ताह पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है उसके लिए, वो फिल्म उतर जाएगी और फिर अगले ही सप्ताह कोई दूसरी हंगामेदार फिल्म आ जाएगी। गाने आते हैं, हिट भी होते हैं, लेकिन उनके हिट की उम्र कितनी होती है, बहुत ही छोटी सी उम्र होती है, याद ही नहीं रह पाते। धुन जरूर दिमाग में थोड़ी बहुत बैठ जाए तो बैठ जाए, और वो धुन भी 1-2 सप्ताह के बाद गायब हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारी अभी जो सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना है, या यूं कह लीजिए जो वातावरण है, वह वातावरण बहुत ज्यादा टेम्परेरी किस्म का हो गया है। इसने हमारे सामने एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक संकट खड़ा कर दिया है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि यह बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बीमारी हो गई है। और मित्रों, अगर यह शुरू से नहीं रहा होता, जैसा कि मैंने कहा कि आज तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, शुरू में भी था, अगर शुरू में नहीं रहा होता, और याद रखिए शहरों में भी था, बड़े महानगरों में भी था, और हमारे यहां तक कि लोक जीवन में भी था। ऐसा नहीं कि लोक जीवन में ये चीजें नहीं थी। हमें इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि आज का ही ये संकट है, या ये शहरों का ही संकट है, या ये बड़े उपभोक्तावादी संकट है, या ये पूंजीवाद की देन है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर युग में कुछ न कुछ ऐसी चीजें रही हैं जो व्यक्ति के अंदर ये संकट पैदा करती रही है। जैसे मैं आपको 2-3 मुहावरे बताता हूं जो लोकोक्तियां हैं। लोकोक्ति मुहावरों का जो जन्म होता है वो तो लोक जीवन से होता है, और लोक जीवन में ही वो पलती बढ़ती हैं, और लोक जीवन से ही वो फिर लोगों के कंठ पे आती हैं, और सालों लग जाते हैं उनको पलने बढ़ने और कंठ में स्थान पाने में। याद करने की कोशिश कीजिए, आपको 2-3 बड़े बड़े प्रचलित और बड़े लोकप्रिय ऐसे मुहावरे मिल जाएंगे जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि नहीं, ये शुरू का संकट है और हर जगह का संकट है। जैसे मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, कहा जाता दूसरे की थाली में ज्यादा घी दिखता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मेरी जो थाली है उसमें जितना भी घी है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। चलिए मैं अपने से असंतुष्ट हो जाऊं, बात ठीक है, लेकिन दूसरे के प्रति आकर्षण हो रहा है ना, तो उसमें ईर्ष्या का भाव आएगा, और अगर दूसरे की थाली में मुझे ज्यादा दिख रहा है तो मैं ये भी सोचूंगा कि यार वह थाली मुझे मिल जाए, या मुझे कैसे वैसी थाली मिले, मैं कैसे उसे हासिल करूं। तो जैसे ही वो दूसरी थाली, आप देख रहे ना, या तुलनात्मक है ना, दूसरी विकल्प, तो अगर ये विकल्प ही नहीं होता तो बात खत्म हो गई, मुझे अपनी ही थाली में पर्याप्त घी नजर आने लगता, तो एक तो यही मुहावरा है फ्रेंड्स। दूसरा मुहावरा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, मतलब नजदीक में ढोलक बज रहा है तो कर्कश मालूम पड़ रहा है कि यार ये तो बड़े बड़ा कर्कश, इसकी तो आवाज बड़ी कर्कश है। दूर से जब आवाज आएगी तो वो आवाज मधुर होगी ही, क्योंकि कर्कशता तो उसकी वहीं रह रही है। धीरे धीरे वो जब साउंड ट्रेवल कर रही है तो वो धीरे धीरे वो बहुत सुरीली होती चली जा रही है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं का भी अर्थ कहीं न कहीं यही है कि अपने ढोल अच्छे नहीं लग रहे हैं, जो कुछ हमारे सामने है वो अच्छा नहीं लग रहा है, जो हमारे सामने हो रहा है वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, दूर का जो कुछ भी हो रहा है वो हमें अच्छा लग रहा है। इसका मतलब है कि हम अपने आमने सामने चारों तरफ के वातावरण से ऊब रहे हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी कहावत है, और वो है कि पहाड़ दूर से बहुत प्यारे लगते हैं, हरे भरे लगते हैं। ये बहुत पॉपुलर नहीं है लेकिन गौतम बुद्ध जी ने इसका बहुत प्रयोग किया है कि पहाड़ दूर से बहुत अच्छे लगते हैं। लगता है कि अरे बाप रे, क्या हरियाली ही हरियाली है, पेड़ ही पेड़ है, कितनी खूबसूरती है पहाड़ पे। लेकिन जब हम पहाड़ के नजदीक जाते हैं तो पता लगता है कि नहीं, हरियाली तो है, खूबसूरती भी है, लेकिन पत्थर भी है, चट्टान भी है, कठोरता भी है, ऊबड़ खाबड़ पना भी है, अनगढ़ पना भी है। ये तो नजदीक जाने के बाद पता लगता है। या इसका मतलब ये हुआ कि क्या हर वह चीज ही सुंदर होती है, अच्छी होती है जो हमारे पास नहीं होती, दूर की चीज ही बेहतर लगती है। तो अब आप देखिए कि अब हम इसी के साथ ही इसको समाप्त करेंगे, फिर इस पर कल हम लोग आगे बातें करेंगे फ्रेंड्स की। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे पास है वो हमारे लिए सुंदर नहीं है, वो हमारे लिए सुहावना नहीं है, और वो हमारे लिए पर्याप्त भी नहीं है। देखिए, इन तीनों मुहावरों में तीनों चीजें हैं। घी पर्याप्तता से जुड़ा हुआ है कि सफिशियंट घी नहीं है, दूसरे के में सफिशियंट है। ढोल सुहावने से जुड़ा हुआ है कि हमें मन को हमारे कौन सा अच्छा लग रहा है, और जो तीसरा है पहाड़, वो सुंदरता से जुड़ा हुआ है। और आप देखिए कि हमारा जो आकर्षण होता है सामान्य तौर पर इन्हीं सब चीजों के प्रति होता है। तो मित्रों, ये मैंने अभी पृष्ठभूमि के रूप में आपसे बातें की थी, जो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें मुझे जो बतानी थी उसके लिए आज अवसर नहीं निकल पाया है, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, कल हम इस पर फिर बातें करेंगे। तब तक आप भी अपने अपने ढंग से सोचने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।